path for happiness, peace and bliss. हम सब जीवन में सुख शांति और आनंद चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं, तो सुख कहां से मिले? कामनाएं पूरी नहीं होती, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, और कामनाएं पूर्ण करने का ट्राई करने से उबरती रहती हैं, जैसे कि आग के अंदर घी डालते रहें तो कभी बुझती नहीं। कामनाओं की निवृत्ति तो हो सकती है, त्याग से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। परमात्मा ने आत्माओं को मोक्ष देने के लिए संसार रचा, मोक्ष मैंने आनंद, अनंत सुख, और हम अज्ञान से बाहर सुख शांति और आनंद को ढूंढते रहते हैं। तो आइए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या मार्ग दिखाया आनंद का। ऋषियों ने योग इज ए साइंस एंड ए टेक्नोलॉजी गिवन टू अस बाय द एंशियंट सेजेस, इंडियन एंशियंट सेजेस, फॉर दिस हैप्पीनेस, पीस एंड ब्लिस, फॉर द हार्मनी विद इन अस। योग इज एज इंपॉर्टेंट एज एयर, वाटर, फूड। हमारे जीवन में योग इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वायु, जल, अन्न हमारे लिए आवश्यक है। जब हम योग के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे भीतर सब तरह का सुख शांति संतोष निर्भयता, हमारे भीतर स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है। अगर ऐसा नहीं करते तो सारे जीवन में दुख ही दुख भरा रहता है। और योग एक ऐसा आधार है जो हमारे व्यक्तिगत लेवल पर, पारिवारिक और समाज के लेवल पर सब तरह से शांति और हार्मनी की एक वर्षा कर देता है। योग इज ए सेकुलर प्रैक्टिस, कोई भी योग की प्रैक्टिस करता है उसी को फायदा होता है, उस सुख के मार्ग पर, पीस के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर चल पड़ता है। और योग ऐसा नहीं है कि आज की ये आवश्यकता है, ये अनंत काल से चला रहा है, और ये इट वॉज एज वैलिड यस्टरडे एज इट इज टूडे एंड इट वुड बी सो टुमारो। योग हैज बीन मेंशनड इन आवर वेदास, इन उपनिषद एंड वैदिक फिलॉसफी, वैदिक दर्शन्स के अंदर जो सिक्स दर्शन्स हैं हमारे वैदिक दर्शन्स, उसमें एक योग दर्शन है बाय सेज पतंजलि। 5000 वर्ष से पहले गीता में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि योग क्या है। समत्तम योग उच्यते, समत्तम, इक्वामिनिटी इज कॉल्ड योग। जब हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में सम रहें, सम के भाव में रहें, वो योग होता है। योगा करम सुकोशलम, किसी भी एक्शन में परफेक्शन, परफेक्शन इन एक्शन इज योग। तो सेज पतंजलि, सम से 5000 ईयर्स बैक, सम से 3500 ईयर्स बैक, सो वेरी लॉन्ग अगो, पुट टुगेदर ए वेरी प्रिसाइज फॉर्मुलेशंस ऑफ दिस योग साइंस, हाउ टू लिव ए वेरी हैप्पी लाइफ। एंड इन जस्ट वेरी स्मॉल book consisting of 195 sutras. This whole technology is beautifully put together. This sutras, 195 sutras in Yoga Darshan is divided into four padas. Samadhi pad, sadhan pad, vibhuti pad and kevalya. Samadhi pad jo hai, usme 51 sutra hai, jisme samadhi ka varnan kiya hua hai. Samadhi, kaise, kitni prakar ki samadhi hoti hai. Sadhan pad, एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या साधन है उस उपाधि उस समाधि को पाने के लिए. विभूति पाद, जब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं हमारे किस तरह की हमें उपलब्धियां होती हैं, विशेष तरह के गुण हमें मिलते हैं, उन सब विभूतियों का उपाधियों का वर्णन होता है. और केवल्य, केवल एक एक जब हम संसार को छोड़ देते हैं और एक केवल अपने में अपना बोध में रहते हैं वो केवल्य. तो ऐसा चार पादों के अंदर उन्होंने वर्णन किया हुआ है. इस सारे हमारी लाइफ के अंदर और योग की लाइफ के अंदर मानव का मन एक हीरो की तरह है. हमें मन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मन चित्त, यू नो, योग दर्शन में इस बार बार इसको चित्त कहा गया है. तो मन की अवस्थाएं, मन की पांच अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र एंड निरुद्ध. तो इनको थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करते हैं ताकि हम जो हमें मन पर संयम करना है, अपने आप को जानना है, उस बारे में जान सकें और उसको वैसा कर सकें. तो शिफ्ट इज ए डिस्टर्ब्ड माइंड, इट्स लाइक ए मंकी माइंड, रेस्टलेस माइंड. एक रेस्टलेस बच्चा जैसे कहीं टिक के नहीं बैठ सकता, तो जब हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, अनकंट्रोल्ड रजस तत्व हमारे भीतर काम कर रहा होता है. और मूड, जैसे आप समझते हैं डल मूड. एग्जाम्पल है डोंकी, गधा. जैसे गधे का बिहेवियर देखते हैं उसको कुछ नहीं लगता, जस्ट मूड. और दो तरह से होता है. और एक सुअर, सुअर क्या होता है कि गंदगी में भी अपना बस मजे में मजे ले रहा है अज्ञान के कारण. तो वो मूड की अवस्था होती है जब हम आलस्य के कारण और अज्ञान के कारण. और विक्षिप्त होता है पार्शली कंसंट्रेटेड, मीन हम जो सात्विक भाव के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं लेकिन संसार से भी जुड़े हुए हैं, तो पाप भी पुण्य करते हैं, पुण्य भी करते हैं, मिश्रित कर्म करते हैं. तो एक सामान्य व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए उसकी सत्व भाव भी रहता है और उसमें रजस और तम भाव के गुण भी रहते हैं, तो वो होता है विक्षिप्त. एंड एकाग्र होता है, उसमें सत्व भाव बहुत ज्यादा होता है. एक योगी का मन एक एकाग्र होता है. तो और योग की भावना, योग यहां से शुरू होता है. जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो उसमें हम वो यहां से योग शुरू होता है. पहली जब हमारा मन शिफ्ट मूड और विक्षिप्त अवस्था में रहता है तो वो योग की अवस्था नहीं होती. और निरुद्ध और भी ऊंची स्टेट मन की, जहां मन के हम पार चले जाते हैं, मन का व्यवहार खत्म हो जाता है, तो उस समय हम निरुद्ध अवस्था में होते हैं. तो यहां पे योग दर्शन में समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का होता है. जो एकाग्र अवस्था होती है चित्त की, वो हमारी संप्रज्ञात समाधि के लिए होती है. और जो निरुद्ध अवस्था होती है वो हम असंप्रज्ञात समाधि, हायर स्टेट ऑफ बीइंग, उसमें हम आत्मा का बोध और परमात्मा का बोध होता है। तो आइए थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं योग क्या है। योग युज धातु से बना हुआ है। ऐसे तो सामान्य में युज मतलब ज्वाइन करना, और युज दो चीजों को हम जैसे दो बैलों के ऊपर वो डाल देते हैं उनको उनको एक साथ रखने के लिए, तो योग योग भी योग युज होता है। और लेकिन यहां योग के अंदर योग दर्शन के अंदर योग से मतलब ट्रांस मीन ए प्रोफाउंड स्टेबल पोजिशन, ए प्रोफाउंड अब्जॉर्प्शन, दैट इज द स्टेट ऑफ योग। जो हमारे ऋषि व्यास जी हैं उन्होंने योग दर्शन पर भाष्य किया है। तो योग को डिफाइन करते हैं योग समाधि। योग इज ए स्टेट ऑफ केवल्य एब्सोल्यूटनेस लोननेस, दैट इज द स्टेट इज कॉल्ड योग। और योग दर्शन शुरू होता है अथ योगा अनुशासन। तो ऋषि कहता है, ऋषि पतंजलि कहता है, आइए अब हम एक ऐसी विद्या की योग विद्या की शुरुआत करते हैं जो एंशियंट अनु जो पुरातन काल से चल रही है। मैं कोई ये विद्या नई विद्या नहीं दे रहा हूं, ये ऐसे ही पुरातन काल से योग की विद्या चल रही है, ऋषि मुनियों ने दिया है और मैं इसका पूरी तरह से वर्णन कर रहा हूं यहां। तो दूसरे ही सूत्र में कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्ति। वृत्ति बार बार शब्द आता है, वृत्ति व्यापार एक्टिविटीज, चित्त मन, मन की जो एक्टिविटीज हैं, व्यवहार हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, जब हम उनका निरोध कर देते हैं, उनको रोक देते हैं, तो तब हमारी सिचुएशन ऐसे होती है कि हम योग की सिचुएशन, एक योगी को देखते हैं जैसे एक दीपक जला हुआ है रात को, बिल्कुल हवा बिल्कुल बंद नहीं है, उसकी लो इधर उधर नहीं होती, कैसे वो प्रकाशित कर देता है सारे के सारे वातावरण को। तो एक योगी का माइंड जब देखते हैं उसके अंदर इतना शांति इतनी संभाव होता है, तो वो योग की स्टेट होती है। वही उसी स्टेट को कहा है योग समाधि। तो कब क्या होता है जब कोई पूछे कि अच्छा हम चित्त की वृत्तियों को तो रोक लें, बस उससे होता क्या है? तो वो कह रहा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब हम चित्त की वृत्तियों को रोक देते हैं तो हम अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। नहीं तो जो वृत्तियां होती हैं वो हमें अपने आप को जानने नहीं देती, वो हम वृत्तियों में ही खोए रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को जानने के लिए हमें वृत्तियों को रोकना पड़ता है। फिर आगे से इस बताता है कैसे करें। अगर वृत्तियों को नहीं रोकते तो क्या होता है? वृत्ति सारूपेम इतरता। सेज कहता है अगर वृत्तियां चलती रहती हैं तो हम वृत्तियों जैसे ही हो जाते हैं। जो हमारे ऊपर टोपी पहन लेते हैं हम उसकी वृत्तियों की, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं धनवान हूं, तो ऐसे सब ये पद सत्ता वस्तु उसको हम अपने आप को जोड़ लेते हैं हम। तो हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है, शरीर मन बुद्धि मेरे सब इंस्ट्रूमेंट हैं, एक चेतन आत्मा है हम। मन बुद्धि जड़ ये सब मन बुद्धि शरीर ये सब जड़ पदार्थ हैं, लेकिन उसका वृत्तियों के कारण अज्ञान के कारण हम उनको एक अपने आप को जड़ तत्व को भी मानने लग जाते हैं। तो उसी के कारण ये हमारे दुखों का कारण बनते हैं। तो वृत्तियां क्या होती हैं? वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा। तो ये जो वृत्तियां हैं जो माइंड की मॉडिफिकेशंस हैं, पांच तरह की मॉडिफिकेशंस हैं, उनको पांच पांच ग्रुप में बांट दिया है, और वो दो तरह की, वो क्लिष्ट भी हो सकती हैं वही वृत्ति, और अक्लिष्ट भी हो सकती है। हमारा उनका, हमारे हम उनसे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम उसको सोचते हैं, वो उसी से क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं, जो हमें संसार की तरफ, मोह में, मोह की तरफ लेके जाती हैं, संसार की तरफ लेके जाती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो हमें मोक्ष के मार्ग पर लेके चलती हैं। तो यहां पांच प्रकार की जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो ये पांच तरह के कारण हमारे वृत्तियां, हमारे भीतर जो विचार उठते हैं, पांच तरह से आते हैं, और यही विचार हमें तरह तरह से तंग करते हैं। इन्हीं को हम स्टॉप करना चाह रहे हैं, इन्हीं को हम रोकना चाह रहे हैं, इन्हीं का निरोध करना चाह रहे हैं। प्रमाण, प्रमाण, परमाणुओं को भी आगे तीन तरह, तीन उसमें डाला है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, जैसे मैं अपने पांच ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान को ग्रहण कर रहा हूं, आपको मैं देख रहा हूं चक्षु से, आप श्रोत्र से मुझे सुन रहे हैं, तो ऐसा प्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान, परिणाम, प्रमाण, किसी चीज को हम देख के और दूसरी जो नहीं देखी हुई चीज है उसका अनुमान लगाते हैं। जैसे मैंने धुओं को देखा दूर से, तो अनुमान लगा सकता हूं कि वहां पे आग भी होगी। बढ़ी हुई नदी, नदी में बढ़ा हुआ पानी देखा तो अनुमान लगाएंगे कि पीछे बारिश हुई होगी, तो तभी इतनी नदी में पानी बहा रहा है इतने वेग से। तो ये अनुमान प्रमाण है, और आगम प्रमाण, और शब्द प्रमाण, जो हमें ऋषि मुनि, महात्माओं ने जो भी हमारे को बताया है, जो भी हम उनके ग्रंथ हैं, उनके शब्दों को मानना उन एज ए प्रमाण। तो ये तीन तरह का प्रमाण है। विपर्य, विपर्य जो जैसी वस्तु नहीं है उसको दूसरा मानना, जैसे हम रस्सी को सांप, अंधेरे में रस्सी को सांप सोच लेते हैं, तो उसके कारण हमें बड़ी हानि होती है। अब इसमें जो ध्यान लगाते हैं, जब ध्यान में हम अपने भीतर की तरफ जाते हैं, अपने भीतर अंधेरे में देखते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, जो ये विपर्य ज्ञान है, ये हमारे को ध्यान में, समाधि में बहुत बाधा डालता है। तो हम वो परमात्मा, हम कहते हैं कि ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापक है, और हम अपने अंदर फिर उसको ढूंढ रहे होते हैं कि परमात्मा कहाँ पे है। वो विपर्य, ये विपर्य ज्ञान है। हम शब्दों में बोल रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आप अपने ध्यान में उसको ढूंढ रहे होते हैं कि परमात्मा कहाँ है। और विकल्प, ये विकल्प, कल्पना करते हैं। शब्द तो होते हैं लेकिन वस्तु नहीं होती। जैसे मनुष्य के सींग, मनुष्य के कोई सींग नहीं होते। शब्द एक सेंटेंस तो ठीक है, मनुष्य के सींग वाला मनुष्य देखा, बट ऐसा कोई चीज नहीं होती, तो हम कल्पना कर लेते हैं। और निद्रा, निद्रा में भी, निद्रा में तम, जो तमस होता है, सत्व रजस तमस, तमस का उभार होता है, और जो रजस और सत्व है वो गौण हो जाते हैं। तो इससे हमें जागृत और स्वप्न अवस्था की का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए निद्रा भी एक वृत्ति है। और स्मृति, स्मृति जो हमारे भीतर, जो हमने पहले से देखा हुआ है, उसके संस्कार भरे हुए हैं, तो वो बार बार उठते हैं, उनको पुनरावर्तित करते हैं, तो वो स्मृति वृत्ति होती है, और वो भी हमारे लिए बहुत ही दुख का कारण बनती है। जब भी हम आंख बंद करते हैं ध्यान के लिए, तो सारी तरह के, तरह तरह के विचार उठने लग जाते हैं, हमारे पास्ट के भी और फ्यूचर की चिंताएं, तो वो हम विचारों में ही खो जाते हैं, वो हमारे ही, हमारे अंदर से विचार उठते हैं। एक तो हमें ये देखना चाहिए, मेरा शरीर ये है, मेरा शरीर खाना खा रहा है, मेरे शरीर को दुख हो रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करें अपने को, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा कार है, ये मेरी बुद्धि है, ये जड़ तत्व है, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कार नहीं हूं। लेकिन रियलिटी में ये वृत्तियों के कारण, अज्ञान के कारण हम अपने आपको कार भी बना लेते हैं, शरीर भी बना लेते हैं, मन भी बना लेते हैं। मेरा मन नहीं मानता, मन तो जड़ है, मन कैसे नहीं मानेगा। आप कहें कि मेरी कार तो आज मुझे आर्य समाज नहीं लेके जा रही, आर्य वो तो जड़ है, आप उसको लेके आएंगे। इसी तरह हमारा मन है, मन के अंदर विचार, मन विचार नहीं उठाता, विचार तो हम ही उठाते हैं, आत्मा ही उठाती है। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे तो हमारे ध्यान में बहुत उस चीज का फर्क पड़ेगा और हम अपने को असली रूप में, हमारे दुखों का कारण वही है जो हम अपने आप को इनसे नित्य और अनित्य में भेद नहीं रहता हमें। तो इनको रिस्ट्रेंट कैसे करें, मन को रिस्ट्रेंट कैसे करें, वृत्तियों को रिस्ट्रेंट कैसे करें। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, तो सेज कहता है कि अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास होता है जो भी चीजें हमारी मुक्ति में सहायक हों उनको बार बार करना, उनका पुनरावृत्ति, उनको बार बार करते रहना। और वैराग्य होता है त्याग, जो भी चीजें हमारी मुक्ति में बाधा बनती हैं उनसे हम त्याग करते रहें। तो जब हम एक लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, निरंतरता करते रहेंगे और सत्कार भाव से, यहाँ पे सत्कार में चार चीजें लिखी सेज ने, सत्कार मतलब श्रद्धा, सत्य के अंदर धारणा, और विद्या ज्ञान, ब्रह्मचर्य कंट्रोल, इंद्रियों पर सब तरह से कंट्रोल, और तप मतलब ऊपर नीचे कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें हम समत्तम रहे। तो ये जब ये दीर्घ काल तक श्रद्धा भाव के साथ, तप के साथ, ज्ञान के साथ जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये हमारे लिए एक परमानेंट हो जाता है, एक दीर्घ काल तक ये एक इसकी दृढ़ भूमि बन जाती है। फिर हमारे साथ हम इसमें और आगे आगे सफलता के मार्ग पर चलते रहते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सूत्र बताया कि ईश उपनिधान द्वा, बस अगर कर सको तो परमात्मा से प्रेम कर लो, उसी को अपना लो। परमात्मा तूने ही मुझे ये जन्म दिया, शरीर मन बुद्धि ये सारा संसार मेरे लिए रचा, मैं भी तेरे लिए हूं। उससे अनन्य प्रेम, जैसे गौ बछड़े से प्रेम करती है। बस फिर वो जो एक मंत्र है, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उससे कीजिए। और यही जानकर जो जिंदगी का रहस्य है, जग की सेवा, बस निस्वार्थ भाव से जब हम जग की सेवा में लग जाते हैं, खोज अपनी, अपने आप को जानने, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या क्या मुझे करना है, कहां मुझे जाना है, और प्रीत उससे कीजिए, उस परमात्मा से अनन्य प्रेम हो जाएगा, तो वो रास्ता भी एक भक्ति मार्ग कह लीजिए कि जो सरेंडर का मार्ग है, दैट इज देयर। तो अब सामान्य व्यक्ति के लिए पाद दो में साधन बताते हैं ऋषि, क्रिया योगा, तप स्वाध्याय ईश्वपनिधान क्रिया योगा। तो कह रहे हैं कि भाई आप योगी बनना चाहते हैं, मतलब अपने दुखों, योगी बनना किसी का तो पर्पज है ना, हमें सुख चाहिए, दुखों से छुटकारा जो सब चाहते हैं, तो उसके लिए तप स्वाध्याय ईश्वर, तप करें स्वाध्याय करें और ईश्वर परिधान। तो ईश्वर परिधान तो मैंने अभी आपको बताया ही, कंप्लीट सरेंडर। स्वाध्याय इंट्रोस्पेक्शन, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें और ऊपर से जो ऋषि मुनियों का सत्संग है, आर्य समाज का सत्संग है, जहां से हमें अच्छी अच्छी चीजों का पता चलता है, ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनके प्रवचन सुनने को मिलते हैं, और तप, मान सम्मान, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, जय विजय, लाभ हानि, सारे द्वंद्वों के अंदर संभाव में रहना, क्योंकि वो आत्मा को कुछ इफेक्ट नहीं करते। उसमें हम संभाव में रहेंगे तो एक योग के मार्ग पर चलेंगे। और जो सामान्य व्यक्ति के लिए एक ऋषि ने बहुत ही अच्छा, सबने सुना होगा, अष्टांग योग, अष्टांग योग, एट लिंब योग दिया, कि आप सुचारू रूप से इसे ये आठ अंग हैं इसके, इसको आप अपने जीवन में लाइए तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगा, सुख शांति और आनंद मिलेगा। या वो ऋषि ने पूरी वो दिया, मतलब एक आपको बताया कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा, आप करके तो देखिए। योगांगुष्ठनाथ अशुद्धिश्चय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। ऋषि कहता है कि अगर योग के अंगों का आप अनुष्ठान, आप अपने जीवन में अनुष्ठान करेंगे, अशुद्धिश्चय, अशुद्धि का क्षय होगा, अज्ञान कट जाएगा, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। और कब तक होगा? विवेक ख्याति, जब तक आप एक उस ऊंची विवेक ख्याति में मुक्ति वाला ज्ञान, समाधि वाला ज्ञान, आपका वो ज्ञान बढ़ता ही रहेगा। अगर आप इस मार्ग पर चलते रहेंगे तो वो आपको मुक्ति तक लेके जाएगा। और वो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम पर रीच द मोक्ष, नॉट कम बैक इन टू द सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम मृत्यु से डरते हैं, एक्चुअली हमें डरना तो चाहिए जन्म से, जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहां से होगी। तो ऐसा करें कि हमें दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। तो क्या होता है कि जब परमात्मा तो दयालु है, परमात्मा जो आप चाहते हैं वही हमें देता है, आप कामनाएं करते हैं तो कामनाएं की पूर्ति करता है, तो कामनाएं पूर्ति के लिए फिर वो जन्म दे देता है आपको। तो बार बार हमें जन्म मरण का, क्योंकि हमारी कामनाओं की इच्छा होती है। जो आप अंतिम समय में उस परमात्मा से मांगते हैं वही वो परमात्मा देता है, इतना दयालु है। तो लोग बाग कहते हैं कि जी ओम कहो, गीता का पाठ पढ़ दो तो अंतिम समय में, अंतिम समय ऐसा होता है जैसे स्वप्न की हमारी स्थिति होती है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो अंतिम समय में वही विचार आते हैं जो हमारे जीवन में, जो हमारे संस्कार पड़े होते हैं, तो वो शुरू से ही हमारे ऐसे संस्कार होंगे तो अंतिम समय में वैसी हमारी मांग होगी, वैसा हम सोच सकेंगे। तो नहीं तो जैसा 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 हमने जीवन दिया है वैसा ही हमारे विचारों के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से विचार होंगे। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम रिटायरमेंट होगी तो तब हम आर्य समाज आएंगे, अध्ययन करेंगे, ये तो शुरू से ही हमें उन संस्कारों को करना है, तभी हम हमारे जीवन में वो बाद में अंतिम समय में वो जो हमारे मोक्ष का मार्ग के लिए हम चाहते हैं वो वैसा हम सोच सकेंगे। तो आइए, यम, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। तो यम और नियम ही हमारे एक बहुत बहुत कहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाउंडेशन टू बी एबल टू गेट रिड ऑफ the pains, the sorrows, the miseries, the dukkhas. Jaise 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 hum inko janenge, ahimsa, free from all will, prani matra se pyar, koi dvesh bhavna nahi, koi irsha nahi, jiyo aur jine do, aisi bhavna ahimsa hoti hai. Satya, truthfulness, jaisa main janta hun, वैसा मैं मानता हूं, वैसा मैं बोलता हूं, वैसा मैं करता हूं. वाणी से, शरीर से और मन से, तीनों से एक रूपता, ट्रांसपेरेंट. सत्य और अहिंसा आपस में एक दूसरे से हिप पे जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही कॉइन के दो फेसेस हैं. अस्ते नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग किसी के दूसरे पदार्थ, किसी का जो पदार्थ है उसको ग्रहण करने की कोई भी इच्छा ना रखें हम, किसी भी तरह की. और स्वामी के उस जिस चीज का स्वामी है उससे बिना पूछे हम कभी भी कोई चीज ना लें. जो अपनी है उस पे हमारा अधिकार है, और बाकी जो दूसरे की है चाहे कितनी बड़ी छोटी है हम उसमें कभी भी ऐसा ना करें. तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे भीतर से निर्भयता, द्वेष, लालच, काम, क्रोध, ये सब मन के विकार खत्म हो जाते हैं. जो भी ये पूरे के पूरे यम नियम आप देखेंगे, जैसे जैसे हम यम का पालन करते हैं हमारे भीतर शांति आती रहती है. हमारे जो भी सराउंडिंग में, परिवार में समाज में, वहां एक शांति का एक बीज मंत्र है अगर हम जैसे जैसे यम और नियम को फॉलो करते हैं. ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑन योर सेंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे हमारी बुद्धि बहुत शार्प होती है और ऐसे बहुत उसमें ब्रह्मचर्य. अपरिग्रह, Not being too materialistic, मतलब हमारे वस्तुओं का, विचारों का, जो हमें जरूरत नहीं है उनका संग्रह करते रहते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनते हैं. वस्तुओं का संग्रह और विचारों का संग्रह, वो परिग्रह है. उनसे जो हमें जरूरत है उसका ही हम वो करें, और अपरिग्रह हम अपने जीवन में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. वही सुख को लेके जाएगा. कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं. चाहिए हमारा हम सारे संसार के मालिक भी बन जाएं, तब भी हमारी कामनाएं कभी नहीं होगी. वो कंटेंटमेंट, संतोष नहीं आता है. नियम, शोध संतोष तब स्वाध्याय, ईश्वर परिधान नियम. पांच नियम हैं. शोच, सुचिता, अंदर की, अंदर और बाहर की सुचिता, भी बाहर से जल से अपने आप को शुद्धि करना, अपने वातावरण को शुद्ध रखना, अपने कपड़े से शुद्ध रखना, और अंदर से शुद्ध होना, मन में किसी तरह के कोई विकार ना हो. मन्नू महाराज कहते हैं, तन की शुद्धि जल से, मन की शुद्धि सत्य से, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से, आत्मा की शुद्धि विद्या और तप से, धन की शुद्धि दान से. तो ऐसे ऐसे जैसे हम ये शुद्धि करते रहेंगे तो मन शुद्ध हो गया तो फिर तो कहीं दुख किसी का रहा ही नहीं. दुख तो हम खुद पालते हैं. संतोष, कंटेंटमेंट, पूर्ण पुरुषार्थ और जो बाकी उसके बाद जो भी मिले उसमें पूरा संतोष, कोई शिकायत नहीं. काम जरूर करना है, आलस्य नहीं है. संतोष आलस्य नहीं है, पूरे पुरुषार्थ के साथ. अपना काम करने से पहले सतर्क रहें, बट परमात्मा ने जो उसका परिणाम दे दिया, परमात्मा न्यायकारी है तो उसमें कोई कंप्लेन नहीं. कोई 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 भी किसी तरह का आदमी के अंदर विचार ना हो कि मेरे को मैं फेल क्यों हो गया, मैं इसमें बिजनेस में क्यों मुझे इतना ही प्रॉफिट नहीं हुआ. जो भी हुआ उसको आप परमात्मा न्यायकारी है और उससे आपको वो सब घुटने से कुछ मिलने वाला नहीं है. तो कंटेंटमेंट इज द बेस्ट टाइप ऑफ एंजॉयमेंट. बेस्ट टाइप ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। तप, तप मैंने बताया ही अभी, तप पीछे क्रिया योग में, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ये पांच नियम, पांच यम का पालन करते हैं तो हमें ये हमारे को सुख शांति के मार्ग पर अग्रस बढ़ते रहते हैं। और फिर आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन, आसन स्थिर सुखम आसनम। जब हम अपने अब हम अपने भीतर की यात्रा में सूक्ष्म की तरफ, सटलनेस की तरफ जाते हैं तो शरीर पे हमारा कंट्रोल हो तो एक स्थिर आसन में बैठ सके हम, स्थिर सुखम आसनम, स्टेडी और कंफर्टेबल बनकर हम एक उसकी ध्यान की ध्यान कर सकें। ध्यान करने से ही हमें पता चलेगा जो जो ड्यूअलिटी है हमारे भीतर, नित्य और अनित्य का जो मिक्स हो गया है उसको उसकी सेपरेशन जब हम ध्यान करेंगे, माइंड को शांत करेंगे, तभी तो हमारे भीतर वो ज्ञान उतरेगा। ज्ञान उतरेगा तो तभी हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे विवेक से। सो प्रयत्न शिथिल्य अनंत समाप्ति भम। अपने 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 आसन को कैसे शिथिर करो, अपनी रेस्टलेसनेस को, प्रयत्न को, प्रयत्न जो एफर्ट डाल रहे हो उसको शिथिल कर दो और अनंत समाप्ति भी हम उस परमात्मा के साथ कनेक्शन कर दो तो आप बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका आसन भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये ऋषि ने बताया कि कैसे हमें करना है। और उससे आगे फिर एक स्थिर आसन में बैठ के तस्मिन सती, उसमें बैठ के उसके बाद आसन के बाद श्वास पर श्वास गति विच्छेदक प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना, उसको रेगुलेट करना, उसको धीरे धीरे कम करना, उसको धीरे धीरे स्टॉप कर देना, वो प्राणायाम है। क्योंकि माइंड और प्राण आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे माइंड माइंड को शांत करने के लिए आप प्राण को शांत करके, माइंड को हम इजीली शांत कर सकते हैं, तो ऐसी उसमें ये ऋषि ने कहा कैसे प्राणायाम से ये होता है। तत्क्षीयते प्रकाशावरणम। तो जो जो हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, तमस का, रजस का, जो दुख हमारे को दुखों का कारण होता है, जब हमारे अंदर रजस भाव और तम भाव उत्पन्न होते हैं और जो सत्व भाव है उसको हम कवर नीचे दबा रहता है, तो प्राणायाम से वो जो रजस और तमस जो दुख देने वाले एलिमेंट हैं वो क्षीण हो जाते हैं और उसके बाद जो सत्व भाव बाहर आने लग जाता है। धारणा सूचे योग्यता मनसा। और मन के अंदर भी एक धारणा की धारणा बनाने की एक योग्यता हो जाती है। प्रत्याहार कंट्रोलिंग ऑन योर सेंसेस। तो अब मन शांत हो गया है, मन के थ्रू ही तो हम सारी ज्ञानेन्द्रियां, पांचों की पांचों ज्ञानेन्द्रियां अपने विषय में वो लग जाती हैं। अब मन शांत हो गया है तो इंद्रियां बाहर की तरफ, ज्ञानेन्द्रियां सिर्फ बाहर की तरफ ही जाती हैं, बाहर ही सब्जेक्ट, बाहर ही अपने विषय भोगों को लेती हैं। तो जब मन शांत हो गया तो इंद्रियों को भी बोल देते हैं कि भाई अब तू शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। मन ठंडा हो गया, इंद्रियां और मन दोनों आत्मा के साथ बैठ गए हैं, प्रत्याहार हो गया है। प्रत्याहार देन इट लीड्स टू धारणा कंसंट्रेशन। अब मन शांत हो गया है, देश बंध से चित्त से धारणा, एक मन को एक देश बंद, एक स्पेसिफिक एक पॉइंट पे हम एक विचार पे उसको अंगेज कर देते हैं, क्योंकि अब मन शांत है तो। और बाकी हम देखते हैं तो जीवन में देखते हैं हम उल्टा चलते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, हम ब्रेन को करते हैं कि अपने मन को 3-4-5 मल्टी टास्क बना देते हैं और एक उधर से कहते हैं कि हमें ध्यान करना है, एक तरफ हम प्रैक्टिस करते रहते हैं मन को चार चीजों में। तो अगर मन को ध्यान करने में हमें चाहिए, ध्यान करने में कुछ सक्सेस चाहिए तो हमें उसको एक एक समय में एक काम करें, तो धारणा हो जाती है ये मैं। और उसकी कंटिन्यूटी, धारणा की कंटिन्यूटी, उसको मन को एक ही जगह रखते हुए उसकी कंटिन्यूटी करते हैं तत्तर प्रत्येक तानता ध्यानम, जैसे एक तेल की धार बनती है उसमें कोई बबल नहीं आता, एक ध्यान, तो मन भी एक ही विचार में एक ही वस्तु पर कंटिन्यूसली वो रहता है, तो वो ध्यान होता है। और ध्यान की जब गूढ़ता हो जाती है तो वो समाधि हो जाता है। समाधि के अंदर जो हमारे जिसको हम शब्दों में ही अर्थ भाव, जो शब्द होते हैं उनका अर्थ भाव, मतलब जैसे मैं प्रत्यक्ष आपको देख रहा हूं वैसा हमारा दर्शन होता है, जो शब्दों का अर्थ भाव हमें मिलता है समाधि के अंदर, ऐसी स्टेट होती है। तो ये शेष पतंजलि ने हमारे को अष्टांग योग दिया हमारे सामान्य व्यक्तियों के लिए, कैसे कैसे हम उसमें करें। तो सर वहां पे योग दर्शन के अंदर ये ब्यूटीफुल मंत्र रहा, मैत्री करुणा मुदीता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विश्वातम भावना चित्त प्रसाद नाम, चित्त को प्रसाद, चित्त को प्रसन्न रखने का मंत्र क्या है, मैत्री है? मित्रता किन से, सुखी लोगों से, जो सुखी लोग हैं उनसे मित्रता करें। हम उल्टा चलते हैं, जो हमें सुखी दिखता है उसके प्रति जलसी होनी शुरू हो जाती है, है? और करुणा जो किसके, दुखी, जो दुखी लोग हैं है? उनके प्रति करुणा कंपैशन का भाव, हम कोई दुखी होता है इसने तो ऐसा ही किया होगा, इसने अपने कर्मों के फल दे रहा है, तो उल्टा वो हम उसका तो पता नहीं कुछ बिगाड़ते हैं कि नहीं, हम अपने को दुखी करते हैं जब ऐसा। मुदितो किन से, जो पुण्य आत्माएं हैं, संत महात्मा अच्छे सभी लोगों से मिलके हमें मुदिता प्रसन्नता इनर जॉय होना चाहिए। उपेक्षा नाम किन से, जो जो विकेड हैं, जो 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 बस ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं और अच्छा नास्तिक लोग हैं उनके समत, बस न्यूट्रल भाव, ना कोई हेट ना कोई उनसे लव अपना, तो ऐसा जब हम वो करते हैं तो हमारे भीतर ये एक सुख हमारे जीवन में आने लगता है। सुख तो मन को शांत करने से मिलता है, इंद्रियों का निग्रह करने से, संयम से, इंद्रियों का शुद्ध आहार से, इंद्रियों का शुद्ध आहार भी होता है उसे भी हम त्याग से, तप से, दान से, ज्ञान से और ईश्वर परिधान से हमें सुख मिलता है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उससे कीजिए, बस जब हम प्रभु को दूसरे तीसरे स्थान पर रखते हैं तो प्रभु कैसे मिलेगा हमें, हम संसार को पहले स्थान पर, अपने परिवार को, इसको उसको, धन को, सबको करते हैं तो प्रभु कैसे मिलेगा। तो प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान, मन शुद्ध कर दो, ऐसी ऐसी प्रेयर हम करेंगे। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु ओ माई ओ गॉड मे माई माइंड बी ऑफ बेनेवोलेंट थॉट। तो ऐसा हम अपने जीवन में ऐसा मार्ग लेंगे तो सच में यही हम, यही वो रास्ता है उसका, सुख का, शांति का, आनंद का। जब हम यम नियमों, हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए, हमारा मेहनत किस में होना चाहिए, जो यम नियम बताए हैं उनको हम अपने जीवन में कर सकें, ना कि एक मन को एक जगह ध्यान लगाने की करें। मन तो ध्यान तब लगेगा ना जब हम यम नियम का पालन करेंगे, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का पालन करेंगे। अगर वृक्ष पौधे को जड़ में पानी देंगे तो तभी फूलेगा, नहीं तो ऐसे मन को आप लगाओ ध्यान में तो ऐसा नहीं होगा, वो तो पत्तों को पानी देने की तरह होगा। तो इन चीजों को समझते हुए अपने जीवन में हम सम के रास्ते पर समत्तम योग उच्चते उसका मंत्र लेते हुए हम अपने इस योग के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को हम सुंदर बनाएं। ओम शांति शांति शांति।